चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त
वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत
चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञान ंदश ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरो श्रीपादकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हम रिकैप करेंगे कल का क्लास। कल हम क्या सुन रहे थे?
रात को ऊपर सुन रहे थे।
तो एक एक पॉइंट आप बता सकते हैं अलग अलग डिवोटीज।
पहला था वैष्णव अपराध, नाम अपराध का। चार तरह के अपराध होते हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध। तो वैष्णव अपराध सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक है, क्योंकि इससे हमारी भक्ति लता जो बीज है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए वैष्णव अपराध के प्रति।
बचने के लिए सोल्यूशन है ये, वो जो लता है उसके चारों तरफ से फेंस बनाना पड़ेगा।
हाँ, फेंसिंग चाहिए भक्ति के लिए चारों ओर से।
सबसे पहले
तो क्या फेंसिंग है?
वैष्णव एटिकेट सीखना चाहिए सबसे पहले।
हाँ, पहला तो है वैष्णव सदाचार को सीखना होगा कि वैष्णव के बीच में कैसे व्यवहार होना चाहिए। और ये श्लोक का आचरण करना चाहिए, तृणादपि सुनिचेन। और थर्ड फेंसिंग, हाँ, डिवोटीज के एसोसिएशन में हम बने रहे। तो ये भक्ति लता को फेंसिंग है चारों ओर से, और ये नहीं होता तो पागल हाथी हमारे भक्ति में, भक्ति रूपी लता हमारे हृदय में बो दी गई है छोटी सी, अच्छा अटैचमेंट वो खत्म हो जाएगी।
जब हम वैष्णव का संग करते हैं तो ये वैष्णव अपराध शुरू होता है।
हाँ, तो जितना अधिक नॉन डिवोटीज के एसोसिएशन में हम आनंद अनुभव करते हैं उतना ही हम वैष्णव अपराध के लिए उत्सुक हो जाते हैं। सभी मोर दास। महाप्रभु कहते हैं केह माने केह ना माने। कुछ तो लोग मान रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि हम सर्वेंट ऑफ कृष्णा है, कृष्ण दास है। कुछ लोगों ने अभी भी नहीं स्वीकार किया है। तो जीव अपराध, जीव अपराध के कनेक्शन में बात बताई थी। दूसरे भक्तों नॉन डिवोटीज है, जीव है, सब कृष्ण के सेवक हैं, ममे वंशो जीवलोके, हाँ, तो उनको प्रति भी हमें हिंसक नहीं होना चाहिए।
वैष्णव अनाथ होते हैं तो उसके दो लक्षण प्रकट होते हैं, एक होता है स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण और दूसरा होता है धन के प्रति लगाव, तो इसलिए कहते हैं कि अगर मतलब कृष्ण कॉन्शियस बनने से पहले कॉन्शियस होना चाहिए कृष्ण होने के बाद
तो वैष्णव अपराध का रिजल्ट है कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण तीव्र हो जाता है और धन आदि के प्रति कामना और भौतिक काम बढ़ता है, तो इसलिए ये दो उसके मापदंड हैं। और आप क्या कह रहे थे एक चीज, हाँ, पहले कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले हमें क्या होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, मतलब हर एक कार्य अटेंटिवली करना चाहिए, चाहे हम प्रसाद ले रहे हैं, चाहे नृत्य आदि कर रहे हैं, चाहे आरती परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि जो भक्त एक समय में एक कार्य करता है फोकस्ड होकर वो सफलता प्राप्त करता है, मतलब हियरिंग के समय हियरिंग के समय और दूसरी चीज नहीं, चैंटिंग के समय चैटिंग नहीं, चैंटिंग और गाते समय केवल गाना चाहिए, कीर्तन के समय कीर्तन, लेक्चर के समय लेक्चर, सेवा के समय सेवा। तो इस प्रकार से ये बहुत सरल उपाय है, टेक्निक है कि एक समय में एक कार्य फोकस्ड होके करना, उसको कहा गया है कॉन्शियस होना। तो फिर आगे हम सोच सकते हैं कि हाँ कृष्ण कॉन्शियस हुआ जा सकता है, तो इसलिए मैंने वो स्लोगन भी कहा था कि अटेंशन इज द सीड ऑफ लव, कि अटेंटिव क्यों होते हम, क्योंकि उससे प्रेम का बीज है वो, तो इसलिए अटेंटिव चांट करना या अटेंटिव हियरिंग चैंटिंग करना वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक लक्षण है प्रेम का। हम देखते हैं भौतिक जगत में भी किसी के प्रति हम अटेंटिव होते हैं तो उसका मतलब है वो चीज से हम प्रेम करते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे और कोई भी व्यक्ति है, भौतिक जगत की जो चीजें हैं, जिस चीज के प्रति हम अटेंटिव होते हैं, हमारा अटेंशन होता है, तो उसका मतलब भी है कि हम उस चीज से प्रेम कर रहे हैं या प्रेम है, थोड़ा सा अटैचमेंट है। तो ऐसी कई चीजें हैं हमारे जीवन में, और कुछ हाँ ये स्वाभाविक है कि हम किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहते, अधिकारी को स्वीकार नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो हम अधिकारी कौन थे, हमारे अधिकारी कृष्ण थे जिनको हमने छोड़ दिया है, तो किसी के अधिकार में हम रहना नहीं चाहते, और यही कारण है अपराध शुरू होने के। हम सोचते हैं अरे जैसे मैंने कल कहा, ये टेंपल कमांडर बना है, मंदिर में देखा जाता है, इसको मैनेज करना नहीं आता फिर भी टेंपल कमांडर बना है। तो इस प्रकार से हम स्वतः परधर्म भयावह, स्वधर्म हमारे जो धर्म है, हमारा धर्म क्या है, सबको रिस्पेक्ट करना, ये हमारा धर्म है, लेकिन हम परधर्म में अपना उंगली डाल देते हैं, चेक करते कि हाँ, तो इसलिए कहा गया है कि अपना कार्य सुव्यवस्थित रूप से करें, चाहे दूसरे के कार्य में आप कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब ऐसा हम शुरू करते हैं तो फिर अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे हृदय में बढ़ने लगती है, दूसरों के डिवोटीज के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा आदि है, और
कोई भी बिल्ड करना चाहता है, it takes a lot of time to build something, it takes few minutes to
discuss. तो चैतन्य महाप्रभु ने चीज कही उस कनेक्शन में कि उपाड़िया छिंडे लता शुके जाए तार पाता समथिंग, मतलब कि भक्ति आपने शुरू कर दी लेकिन वैष्णव अपराध रूपी पागल हाथी को आपने इनवाइट किया है अपने गार्डन में, तो भक्ति लता को पूरी तरह से विनष्ट कर सकता है। तो इसलिए मतलब भक्ति को ग्रो करने में, केयर करने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत मेहनत, जैसे जो गार्डनर है एक वृक्ष को थोड़ा बढ़ाने के लिए उसकी कितना केयर करता है, समय समय में जल देना, कई सारी चीजें। लेकिन हाथी तो छोड़ो, बकरी आ जाए तो भी क्या कर सकती है, उसको खा सकती है। तो हम सोचे ठीक है, नहीं वो बड़ा भक्त है, उसके प्रति अपराध नहीं करेंगे, आपस में हम शुरू करते हैं। नहीं तो बकरी तो हाथी से बिल्कुल छोटा जीव है, लेकिन वो भी चतुर है भक्ति लता को खाने में। तो हर भक्त के प्रति, तो जीव जीव अपराध को कहा गया है, तो फिर भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जाड़ मुखे सुने एक बार कृष्ण नाम। हाँ, एक बार भी कृष्ण नाम लेता है तो उसको भी उसी दृष्टि से देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लक्षण बताए उन्नति के स्तर भक्त के। तो मतलब यही चीज सिखाई जाती है कि हमारा धर्म है आदर करना। और कोई है पॉइंट? हाँ, वैष्णव अपराध में भी छह भेद है, विभेद, छह प्रकार के वैष्णव अपराध है। कौन कौन से है छह वैष्णव अपराध? किलिंग द वैष्णव, हंती, हंती मतलब हाथ उठाना, हाथ उठाना सबसे वो नीच लेवल है, मतलब सबसे आखिरी स्टेज है। वैष्णव अपराध भक्त के प्रति मन में हम सोचते हैं, और फिर बाद में वही अपराध कहाँ आ जाता है? वाणी में। वाणी में जैसे आता है वैसे हाथ पांव चलने लगते हैं, है कि नहीं? नेचुरली देखते, पहले किसी के प्रति थोड़ा गुस्सा मन में होता है, फिर सब जगह प्रकट होता है, बॉडीली लेवल में, आंखों में रेड हो रहे हैं, नाक ये हो रहा है ना, स्पंदन हो रहा है, और जीवा या मुंह और हाथ पांव बिल्कुल तैयार होते हैं उसकी पिटाई करने के लिए, क्रोध। फिर क्या है? फिर वो फिजिकली ये करता है, वाणी से प्रकट करता है और फिजिकली प्रघात करता है। तो ये एक है हंति। दूसरा क्या है? निंदंती। निंदंती का मतलब क्या है? निंदा करना। हंती निंदंती, निंदंती से निंदा, तो निंदा करना भक्तों की, दूसरों की, किसी ना किसी प्रकार से लूप होल ढूंढते हुए। तो निंदा करना वैसे ही अच्छा नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में इसी चीज को ग्लोरिफिकेशन कहा जाता है। या फिर जरूरत से ज्यादा स्तुति करना, वो भी एक निंदा है। अति स्तुति निंदा रा लक्षण, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अति स्तुति। प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, और ना हम कई बार करते हैं ना, बस आप शुद्ध भक्त हैं और आप सर के बल पर चलते हैं, और हम लोग कुछ भी जो भी अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं, तो वो भी मतलब है नहीं, लेकिन हमें पता है डिवोटी के बारे में, फिर भी हम क्या कहते हैं उसकी ओवर। महाप्रभु ने कहा आप सब लोग क्या कर रहे हो, मेरे जब सर्वम भट्टाचार्य आदि ने महाप्रभु की प्रशंसा की तो कहते नहीं ये ठीक नहीं, ये क्या कर रहे हो? अति स्तुति निंदा रा लक्षण, जरूरत से ज्यादा स्तुति भी कर रहे हो तो एक प्रकार से आप मेरी निंदा कर रहे हो। जैसे भौतिक जगत में भी देखते हैं ना, मजाक करते हैं, या भक्तों के बीच में भी किसी एक भक्त के साथ तो दो तीन मिला के उनको ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो ये भी एक निंदा का ऑब्जेक्ट बना देते हैं भक्त को हम, स्तुति के नाम पर उसको निंदा का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये एक चीज है जो हमें भक्ति से वंचित करती है। और एनवी, वैद्वेष्टि, हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि। द्वेष्टि का मतलब है द्वेष, ईर्ष्या भक्त के प्रति। तो ईर्ष्या के बारे में कुछ कहा जा सकता है? तो ईर्ष्या जो चीज है वो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, एनवी को। और एनवी तो स्वाभाविक हमारा गुण है, इच्छा द्वेष समुत्ते न द्वंद मोहे न भारत, हे अर्जुन। इच्छा और द्वेष के कारण इस भौतिक जगत में हम भगवान से अलग होके आए हैं। तो ये जो ईर्ष्या है जिसे हम कृष्ण की सेवा में नहीं यूज कर सकते, शास्त्र कहते हैं उसको तो आपको अपने हृदय से निकाल के फेंकना पड़ेगा। आरतो उपाय ना है गोपीनाथ, और कोई उपाय नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। बाकी चीजों को तो आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। काम कृष्णार्पणे, काम का मतलब है भौतिक भोग की इच्छाएं वो कृष्ण को समर्पित कर सकते हो। लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ है ग्रेड है तो क्या करो, हाँ बोलिए ना, बोलने में भी लोभ नहीं हमें। लोभ साधु संगे हरि कथा, तो रखना है लोभ तो किस में रखो, साधुओं का एसोसिएशन करने में। कल तो हमने इतना वंडरफुल प्ले आप लोगों ने परफॉर्म किया, वो इसी की शिक्षा देता है, किस चीज के साधु संघ की महानता। लभ मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है, तो हम ये नहीं सोचेगा भी साधुओं को ढूंढता हूँ, नहीं हमारे आसपास सारे साधु हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कथयन्तश्च माम नित्यम, साधु का गुण क्या है, जैसे ही मिलते हैं उनका सेंटर कृष्ण हो जाता है और वो कृष्ण के संबंधित चर्चाओं में आनंद लेते हैं। हम भौतिकवादी मिलते हैं तो उनका चर्चा का विषय भौतिक भोग का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब देखो भौतिक जगत में कोई और टॉक है ही नहीं, दो ही है, या तो स्त्री है या दूसरा धन है। मतलब जब भी मिलेंगे फोन पे भी बात करेंगे, घुमा फिरा के कहा आएंगे, वही चाहे वो न्यू ईयर पार्टी हो या फिर दिवाली हो, मतलब पूरे साल में जो भी उनका बेस्ट आनंद की चीजें हैं घुमा फिरा के वही सेंटर पॉइंट में ले आते हैं। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, सेंटर कृष्ण है। चाहे जहां भी हो जिस स्थिति में भी हो, भक्त लोग जैसे मिलते हैं तुरंत कृष्ण का गुणगान करते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि, ईर्षा ईर्षा किसी भक्त से है तुरंत हमें उनका गुणगान करना चाहिए, ये न के न प्रकार न उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो छुपा कर करो उनकी सेवा या जैसे भी करो, तो हृदय का ये जो रोग है एक दूर हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन है ईर्षा को निकालना। और ना अभिनंदन्ति, अभिनंदन नहीं करते उनका, मतलब वेलकम नहीं करते डिवोटी का, वही है ना, वेलकम नहीं करना, स्वागत नहीं करना भक्तों का, ये भी एक क्या है, मतलब ये बोझ महसूस करना, अरे ये भक्त कहाँ से आ गया, टेंशन अभी शुरू हो गई। ना अभिनंदन्ति, उसके आगे
क्रुद्धते,
क्रुद्धते क्रोधित हो जाना, भक्त के ऊपर क्रोध प्रकट करना। आगे हर्षति नो हर्षति, के हर्षित नहीं होना, भक्त आ रहे हैं और हम सोचे कि नहीं अभी क्या करता हूँ, अपना रास्ता चेंज कर देता हूँ या फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ, पता है आज आने वाले या फोन आने वाला है, तो यह भी एक लक्षण है, नो हर्षति, देखकर हर्षित नहीं होना भक्तों को। तो ये छह प्रकार के वैष्णव अपराध हैं जो हमारे भक्ति को विनष्ट करते हैं या सुखा देते हैं, हृदय को क्या बना देते हैं, बंजर रेगिस्तान भूमि, बंजर भूमि बना देते हैं, जिसमें लगता है कि अरे भक्ति नहीं की इतने सालों से, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अचानक क्या हो गया, हृदय बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कभी कभी महसूस होता है ब्लैंकनेस, नहीं ब्लैंक हो जाता है वैष्णव अपराध से जो हृदय है। तो इस चीज से बचने के लिए जो वैष्णव अपराध आदि हैं, तो भक्तों से सही मायने में जो व्यवहार है वो हमें सीखना चाहिए। और आगे क्या सुना था हमने,
वैष्णव अपराध तो फीस्ट में रख के सबको बुलाना,
उनके प्रति हमने अपराध किया है, रूप गोस्वामी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार से हमने कल सुना था कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती रहे नहाय उद्गम। इस प्रकार से जो भक्त भक्ति में लगा है वो आवरण क्रिएट करता है भक्ति को बचाने के लिए, और वो तीन प्रकार के आवरण हमने चर्चा किए थे। हाँ, अपराध हस्तिर ऐछे नाह ये उद्गम, ये जो पागल हाथी के समान जो वैष्णव अपराध आदि है ये एंट्री नहीं कर पाएंगे इस फेंसिंग के अंदर। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये लक्षण है, ये डिवोटी को करना चाहिए उसका भक्ति लता को बचाने के लिए। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं किंतु जदि लतार अंगे, किंतु जदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि भक्ति लता के साथ और कई शाखाएं उपशाखाएं उठ रही हैं। हाँ, जैसे मेन कोई पौधा लगाया है उसके साथ साथ और भी कई क्या निकलते हैं, पेड़ निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं, घास फूस या पता नहीं दूसरा कोई एक शब्द हो सकता है, अनवांटेड जो पेड़ हैं, जंगली पौधे, ये सही है, खरपतवार भगवत गीता के हिंदी अनुवाद में आया है पहले श्लोक है धृतराष्ट्र वाच के तात्पर्य में कि किसान जिस प्रकार से खरपतवार को उखाड़ के फेंक देता है तो वैसे कृष्ण भी क्या करेंगे इस युद्ध से उनको उखाड़ के फेंक देंगे कौरवों को। कृष्ण भक्तों की भक्ति का ये करते हैं, रक्षा करते हैं। भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा, भुक्ति भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, मुक्ति की इच्छा आदि। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असंख्य है लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं उनको छह में विभाजन करते हैं कि क्या क्या वो वेड्स हैं, क्या क्या पौधे हैं जो उगने लगते हैं भक्ति के साथ साथ और हम उनको ही असली भक्ति समझ बैठते हैं। कई बार ये होता है भक्तों के साथ। तो लॉर्ड चैतन्य कहते हैं निषिद्धाचार कुटिनाटे जीव हिंसान लाभ पूजा प्रतिष्ठा दे जत उपशाखा गान। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि हाँ, जो एक्सपर्ट किसान है, गार्डनर है, हाँ वो जैसे ये क्रिपर बढ़ने लगता है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो वैसे ही हाँ वो देखता है कि उसके साथ साथ जो ये अनर्थाज है इनको क्या कहा जाता है, अनर्थ, जो अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति अटैचमेंट। भक्ति के साथ साथ किसी और चीज के प्रति अटैचमेंट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उपशाखा। ये सब क्या है, उपशाखा, मेन ब्रांच नहीं है, मेन क्रिपर नहीं है, भक्ति लता नहीं है, उसके अलावा ये बाकी चीजें हैं। तो जब सही ढंग से श्रवण और कीर्तन आदि में नहीं लगता जो साधक है भक्ति करते करते हैं, तो साथ साथ ये उपशाखाएं भी निकलने लगती हैं। और उपशाखाओं को यदि वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एनालाइज नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा कि अरे हाँ क्या क्या वीड्स साथ साथ आ रहे हैं, तो लॉर्ड चैतन्य बता रहे हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है निषिद्धाचार, एक तो आचार है, आचार कौन सा आचार, खाने वाला आचार नहीं, सदाचार, आम का आचार नहीं, सदाचार, वैष्णव सदाचार, सदाचार मीन वैष्णव एटिकेट। तो जो वैष्णव आचरण है निषिद्ध, जो चीजें कही है कि इस प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए, जैसे हमने अभी छह प्रकार के निषिद्ध आचरण देखे वैष्णव के प्रति, तो वो उनको अवॉइड करना। या व्यक्ति जब जो नहीं करना है उनको करता है और उनको क्या समझ बैठता है, ये क्या है, सदाचार है, जो निषिद्ध कहा गया है, जिनका ज्ञान नहीं रखता या धीरे धीरे जो नहीं करना है उसको वो उसी को ही सदाचार सोचता है, तो ये ऊपर शाखा है। इसका कोई उदाहरण हो सकता है, कोई ऐसा आचरण है जो करना नहीं है लेकिन हम करते और उसको ही सोचते कि यही सदाचार है,
कुछ पे डांट रहा हूँ, वो जो मैं सेवा कर रहा हूँ वैसे वैसे नहीं करूँगा तो नहीं होगा, फिर डिवोटीज को डांट रहा हूँ उसको हर्ट हो रहा हूँ, फिर इस थिंकिंग की
सेवा कर रहा हूँ मैं, इनके बाद डांटना भी पड़ता है तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो है निषिद्ध आचार, मतलब कोई आपके पास सेवा दी गई है, कौन सी सेवा कि आप भक्तों के लीडर हो, भक्ता इंचार्ज हो, और आप फिर मतलब जितना बड़ा आपके पास पद है उसके उतने बड़े आप क्या हो, सर्वेंट हो, सर्वेंट लीडर, ये शब्द यूज किया है ना उसके लिए, सर्वेंट लीडर, लीडर है लेकिन किनका लीडर है, सारे सर्वेंट का, क्योंकि वो महान सर्वेंट है, तो ये भूल जाता है और वो प्रभुत्व की भावना आती है, प्रभुत्व, तो इसलिए वो फिर उसी के अनुसार आचरण करता है, बल्कि उसको कैसे आचरण करना चाहिए, विनम्रता के साथ। भक्ति सिद्धांत महाराज गुरु थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे, लेकिन जैसे डिसाइपल्स आते थे वो कहते थे दासोस्मी, मैं आपका दास हूं, तो ये भावना, जो आचरण योग्य नहीं है, निषिद्ध किया गया है, और उसको करना और सोचना कि ये सदाचार है, तो ये एक उपशाखा है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है भक्ति में कि हम सदाचार को समझे, सीखे, जाने कि क्या है वैष्णव के लिए सदाचार क्या है, और जो वैष्णव सदाचार का पालन करेगा उसके भक्तिमय जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती, उसके लिए तो एक्सप्रेस हाईवे है, भक्ति क्या हो जाएगी उसके लिए, एक्सप्रेस हाईवे। तो इसलिए है ये निश्चित आचार, और चैतन्य महाप्रभु दूसरा कहते हैं, दूसरा क्या है, कुटी नाटी, ये शब्द से कैसे पता चलता है कुछ तो, ये शब्द सुनने में ठीक लग रहा है क्या आपको, कुटी नाटी, मतलब क्या है कुटी नाटी का, मतलब है कपटता, डुप्लिसिटी, कपटता क्या है कि बको धार्मिक बिराड़ी वैष्णव, ओडिया में कहा गया है बको धार्मिक बिराड़ी वैष्णव, तो बक कौन है, बगुला उसको क्या कहते, क्रेन ना, आपने सुना होगा, मैंने लास्ट टाइम शायद कहा था इनके बारे में, तो कुटी नाटी का मतलब है कपटता, और जब तक कपटता हृदय में रहेगी तब तक कृष्ण भक्ति रूपी जो बीज है उसकी अंकुर होने की संभावना भूल जाइए, भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते, थोड़ा भी नहीं उन्नति कर सकते, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो सरल हृदय के हैं लोग उनके लिए जो भक्ति है वो बहुत सरल है। कई बार हमें बहुत कठिन महसूस होता है भक्ति, क्यों, क्योंकि हमने कपटता को हृदय में धारण किया है, तो इसलिए लॉर्ड चैतन्य ने कहा कापट्य हरि ने दूर बाढ़े प्रेमेर पूर, कि जब हृदय की कपटता जाएगी तो हृदय में कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो जागृत होगा, और कपटता का मतलब ही क्या है कि जो है नहीं उसको है दिखाना, कपटता का मतलब क्या है कि मैं जो नए हूं मैं क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि मैं महान भक्त नहीं हूं, लेकिन मैं दिखा रहा हूं सारे जगत को कि मैं कौन हूं, एडवांस डिवोटी, उन्नत भक्त हूं, तो ये जो कपटता है जो हृदय में रहेगी तो बहुत कठिन है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो क्रूकर हृदय का है उसके लिए भक्ति करना बहुत बड़ा तपस्या हो जाएगा, तब हम सोचते कि अरे अरे कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि ये जो योग है ये कैसा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये तो सुसुखम है, प्रत्यक्ष अवगमन धर्म, प्रत्यक्ष देख सकते हो, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो कि ये सुसुखम है, हाँ लेकिन जब हम परफॉर्म करना शुरू करते हैं हमें दुखम महसूस होता है, कितना, क्यों, क्योंकि कपटता के कारण, तो इसलिए ये जो सुसुखम जो वृत्ति है या भक्ति है परफॉर्म करना, ये उसके लिए है जो सरल हृदय का है, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा कि डेफिनेशन क्या है वैष्णवता की, कौन है वैष्णव, उसकी डेफिनेशन क्या बोली उन्होंने, सिंप्लिसिटी इज द वैष्णविज्म, कि सरलता ही वैष्णवता है, और सरलता का मतलब क्या है, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो आइडियल एग्जांपल है, उसका हृदय बिल्कुल ये रहता है, छोटे बच्चे का क्या रहता है, चंचल नहीं होता, चंचल तो होता है लेकिन सरल होता है। आप उसको दो लड्डू दे दो वो आपका हो जाएगा ना, मतलब हमारे लिए बहुत टफ, मतलब हमें कोई वैसा करना चाहे क्योंकि कपटता इतनी भरी पड़ी है, तो जो जो कपटता है वो बाधक है कृष्ण भावना में, इसलिए कूटी नाटी भक्ति सिद्धांत महाराज उस चीज को कहते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि बाकी योनियों में जन्म लेना बहुत अच्छा है यदि ह्यूमन लाइफ मिलने के बाद कपटता हृदय में रखते हैं, मतलब उससे अच्छा है कि क्या हो जाए आपको, बाकी योनियों में आप जन्म लो तो बहुत अच्छा है, उसमें आप साइकिल से आगे आ सकते हो, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ मिलने के बाद भी जो कपटता आपने रखी है, कपटता हमारे हृदय में बनी रहेगी तो वो हम उससे भी नीच है, पशु जीवन से भी बहुत अधिक हम निम्न धरातल पर है। तो कपटता क्यों आती है, एक तो जब हम नए हैं वो दिखाना चाहते हैं, मतलब कुछ मान सम्मान आदि चाहते हैं, चाहते हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, आदर वगैरह चाहते हैं, और जो श्रद्धा है उसकी कमी होती है, तो ये जो कपटता रूपी बीज हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कपट्य हैले दूर बाढ़े प्रेमेर पूर। तो कपटता वो उदाहरण में बता रहा था कि बक धार्मिक बिराड़ी वैष्णव, बक का मतलब है बगुला, अब वो अभी डिवोटी बन गया, उसने क्या किया, भक्त क्यों बना हो, क्योंकि सोचा अरे डेली मछली तो मिल ही नहीं रहा है, उसके लिए इतना कष्ट करना पड़ रहा है, उससे अच्छा है टेम्पल ब्रह्मचारी बन जाता, कुछ काम नहीं, पता भी नहीं उस ब्रह्मचारी को कि आलू का आजकल क्या रेट चल रहा है, अब किसी ब्रह्मचारी को पूछो उनको कुछ पता नहीं है टेम्पल डिवोटीज को, राइस का आजकल क्या रेट है, ऑयल आदि का नहीं, उनको देख के पता है, सुबह उठो थोड़ा बहुत नाचो थोड़ा जप करो और 9 बजे प्लेट लेके निकलो प्रसाद के लिए, तो इतना सरल है। हाँ, बगुले ने जब ये सुना तो उस बगुले ने सोचा रे इतना वंडरफुल लाइफ है क्यों इतना टेंशन लेना है, पूरे दिन दिन ऐसे बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाता है किसके लिए, एक मछली प्राप्त करने के लिए, और वैसा ही लाइफ है ऑफिस आदि में, हम वैसा ही करते हैं, एकांत हो जाते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के आगे कि नहीं ऑफिस में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बगुले की तरह बिल्कुल ध्यान मग्न होते हैं, और कोई आता है तो महसूस होता है कि वह हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो बगुले ने सोचा है तो बहुत अच्छा जीवन है, उसने भी शेविंग कर लिया, ये तो अतिशयोक्ति बता रहा हूं मैं आपको मिर्च मसाला लगा के होता है ना थोड़ा सुनाना, तो उसने भी क्या किया शेविंग किया, उसने सोचा फिर उसने तिलक आदि धारण किया, धोती कुर्ता ऑलरेडी सफेद ही था उसका कलर तो उसके लिए बहुत सुटेबल था सफेद धोती कुर्ता, तो बेड बैग वगैरह लेके वो बैठा है, और अभी बिल्कुल निश्चिंत है, अभी वो बिल्कुल ध्यान मग्न है, और तो बाकी मछलियों के समाज में प्रचार हो गया, और उसके पहले तो आसपास कोई घूमता नहीं था, उसके बगुला पानी में है तो उसके आसपास कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मछलियां आने लगी, किसी एक मछली ने पूछा हरी बोल आप क्या है आजकल, बिल्कुल ये है आप कुछ पकड़ ही नहीं रहे आपके भोजन देते नहीं, नहीं अभी मैं वेजिटेरियन हो गया डैडी क्या हो गया हो हाँ शाकाहारी, मैं मांसाहार को त्याग किया, क्यों, क्योंकि मैं आजकल बेस की क्लास में जाता हूँ फोर रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल है उसको मैं पालन कर रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा कौन कौन से हैं, उसमें से ये है कि मैं वो नहीं खाता, तो सारे मछली आदि बिल्कुल डिवोटी है, इनके आसपास जाना कुछ खतरा नहीं है, मछली वगैरह पूरे अपने फैमिली के साथ इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हाँ तो बीच बीच में जब हरे कृष्णा करते हैं तो फिर देखते हैं मछली बहुत नजदीक है, तुरंत दीप निकालते हैं, डालते हैं और पुनः क्या करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्या कहेंगे, कुटी नाटी, ये शब्द ही इतना कठिन है, कूट कूट के भरा है ये कपड़ता हमारे हृदय में। तो ऐसा जो बगुला है धीरे धीरे वैष्णव बन गए। और अब देखेंगे कोई ऐसा कार्य करना है जो बहुत टफ है, उसके लिए लोग साधु का वेश धारण करते हैं। अरे अभी से नहीं, पूर्व से एक परंपरा चल के आई है। कब से, पृथ्वी महाराज ने जब यज्ञ किए, सबसे पहले इसका दुरुपयोग किया इंद्र ने। इंद्र का जीवन ही ऐसी चीजों से भरा पड़ा है, कभी किसी की पत्नी चुरा लेंगे, कभी ब्रजवासियों को तंग करेंगे, हाँ पता नहीं, उनका जीवन में तो यही चीजें हैं। तो उन्होंने साधु का पहली बार वेश धारण किया और उनका अश्वमेध का जो या घोड़ा है वो चुरा के ले गए। और कैसे वेश में, साधु के वेश में, क्योंकि साधु को ज्यादा ये नहीं करता व्यक्ति ना, तंग नहीं करता, इजीली काम कर सकता है। हाँ मतलब उसको कहा जाता है कि मछली पानी में रह के कब पानी पीती है उसका पता नहीं चलता। निर्जला एकादशी के दिन मतलब स्नान करते हैं बार बार, कब पानी पीते वो भी नहीं पता चलता। इसलिए बार बार हम जब निर्जला एकादशी आते तो पूरे दिन 3-4-5-8 बार शॉवर करते हैं, अधिक से अधिक ठंडा रहे, कूल। तो ये है। और रावण ने भी ऐसे ही किया। रावण ने क्या किया, सीता को हरण करना कितना टफ है, रावण ने भी सैफ्रन वस्त्र धारण किए, अपना काम किया उसने। और आजकल भी तो इस प्रकार से जो कुटी नाटी है, हाँ इसको कहते हैं बक धार्मिक, बक मीन्स बगुला, क्या बन गया, धार्मिक व्यक्ति बन गया। हाँ धर्म के नाम पर आप सब भोग प्राप्त कर सकते हो, भुक्ति, इसको क्या कहते हैं, भुक्ति, भोग करने की चीज है। बक धार्मिक, बिराड़ी वैष्णव, बिराड़ी का मतलब है बिल्ली, 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 बिल्ली क्या बन गई, वैष्णव बन गई। तो कैसे वैष्णव बन गई, आप थोड़ा इमेजिन करिए, एनिमेशन बनाइए इसका, अच्छा बन सकता है इन दोनों का ना लंबा कन्वर्सेशन, ड्रामा भी हो सकता है थोड़ा 10 मिनट्स का, हंसने वाला और शिक्षा प्रद। तो बिराड़ी वैष्णव, तो ये जो इसके साथ भी वही हुआ, क्योंकि क्या चाहिए इसको, चूहे को पकड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ बिजनेस है चूहे को प्राप्त करना। तो बिराड़ी ने सोचा, अरे सबसे सरल, बिल्ली ने सोचा सबसे सरल उपाय क्या है, वैष्णव, बिराड़ी वैष्णव, वैष्णव बन जाता। और उसने भी वैसे किया बिल्ली ने, सेम। हाँ आजकल तो शेविंग के लोग ये आते हैं, मतलब बाल ढक जाएंगे आपके और आप लगेगा कि हेड शेव किया है आपने। तो उसने भी वैष्णव बनी बिल्ली, रोबी नाम जब शुरू किया, और एकांत में बस भजन करती रहती थी, गले में घंटे डाला था, हिलाती थी, वो करताल का काम करता था। और गा करती थी। तो फिर देखा, अरे आजकल तो बिल्ली जप माला लेके बैठी है एक जगह। आप सोच सकते हो बिल्ली को वैष्णव बना दो, हेड शेव है, तिलक आदि था, उसका तिलक तो ब्लैक है लेकिन कुछ सफेद बाल आ गए थे, तो नेचुरल इनबिल्ट तिलक था उसके इस पर। तो जब ऐसा वो कर रहे थे तो फिर बाकी चूहे, तो चूहे के लिए तो बहुत यह है, बिल्ली नाम सुनते ही वो लोग बहुत अधिक उनके लाइफ में यह हो जाता है, आतंक मच जाता है। तो फिर जब बिल्ली भी ऐसी वैष्णव बनी तो चूहे ने भी जैसे मछलियों ने पूछा कि बिल्ली माता जी, बिल्ली माता जी, आप तो आजकल बहुत शांत है, कुछ प्रयास नहीं कर रहे। नहीं नहीं, अभी मैं ये हो गई हूँ क्या, वैष्णव। तो बिल्ली माता जी ने देखा कि अभी थोड़ा बीच बीच में भजन और
भोजन,
भोजन, हाँ भजन तो होता नहीं, इससे भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, भोजन हमें स्ट्रेंथ देता है भजन करने के लिए। तो उसने वैसे ही किया, चूहे घूम रहे हैं और अचानक एक को उठाती थी, काम तमाम करती थी, फिर से अपना तिलक आदि धारण करके फिर से बैठ जाती थी। तो ये इसको क्या कहते हैं? कपटता, कूटी नाटी। हाँ, कूटी नाटी होगी तो फेथ नहीं होगा, श्रद्धा की कमी होने से फिर हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हरि 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 करी भव पारी, और कहते नहीं महाराज बता रहे थे कि दो स्त्रियां थी, हाँ, जो एक बहू थी और एक सास थी, तो वो रोज कृष्ण कथा सुनने के लिए जाते थे। और इन सब का मेडिसिन क्या है? सुनना। क्या है? सुनना, हियरिंग। इसलिए लॉर्ड चैतन्य कहते बार बार, श्रवण कीर्तन जले करे टेंशन। बार बार कहते कि आप भक्ति लता को तो अपने लगाया है बीज को, लेकिन आप हियरिंग श्रवण कीर्तन रूपी जल को नहीं डाल रहे हो, तो ये लता स्ट्रांग नहीं होगी। राजसने की श्रवण कीर्तन ये कोई एनुअल प्रोग्राम है, साल में कभी करते हैं, या सात दिन कर लिया हो गया, नहीं, या हफ्ते में कभी कर लिया बस, नहीं। कैसे? नित्यम 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 भोजन करते हैं कि नहीं? कि हफ्ते में, अभी भोजन सप्ताह चल रहा है हमारा, एक हफ्ता केवल भोजन करेंगे नहीं, या फिर कभी कभी भोजन नहीं, नित्यम। तो वैसे ये नित्यम भागवत सेवया, तो ये नित्य होना चाहिए श्रवण, और ये श्रवण ही मेडिसिन है इन सब की। इसलिए बार बार ये सारी चीजें हमें उस सेंटर पॉइंट में ले आती हैं। तो जहां से भी आप चाहे कितना डिस्कशन आदि करो, अलग अलग एंगल से हमें समझाते हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, साधुज हैं, अलग अलग उदाहरण उनके द्वारा, लेकिन करने के लिए हमें एक ही कहते, क्या करो? नामे रुचि जेवे दया वैष्णव सेवा। मतलब नाम में रुचि करो, जीवे दया, जीवे दया मीन्स प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और वैष्णव सेवा। आपस में अभी कहेंगे नहीं प्रभु जी, वैष्णव आएंगे ना बेस में तब सेवा करेंगे, नहीं, यहाँ 10-20 वैष्णव है, एक दूसरे की सेवा शुरू करो, यही है। एक दो मंदिर थे, तो एक मंदिर में तो बिल्कुल लोग जा ही नहीं रहे थे, और एक मंदिर में तो इतना भीड़ कि सोच नहीं सकते इतने लोग। तो जब दूसरे मंदिर का भक्त ने सोचा, अरे उस मंदिर में इतने लोग जा रहे हैं, हमारा मंदिर तो बहुत खाली रहता है, क्या कारण है? तो जब गया तो देखा कि क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि हर कोई वहां टेम्पल का वातावरण ऐसा सरचार्ज था, हर कोई एक दूसरे की सेवा में लगा हुआ है। तो फिर इनके मंदिर में तो लोग आने रहे थे, वो चीज से लोग बहुत अधिक प्रभावित थे। तो दूसरे मंदिर से कहा कि आपके मंदिर में एक शुद्ध भक्त है, क्या है? एक आप सब लोग रह रहे हैं उसमें एक कौन है? शुद्ध भक्त है, और उसकी सेवा करो। तो जैसे ये जाता है तुरंत ब्रह्मचारी मीटिंग होती है, और उसमें ये बोला जाता है कि हम सब में एक कौन है? शुद्ध भक्त है, उसकी सेवा। तो हर कोई क्या सोच रहा था? हाँ, ये शुद्ध भक्त है, ये सोच रहे थे ये शुद्ध भक्त है, ये सोच रहे थे ये शुद्ध भक्त। तो इस प्रकार से ये जो वैष्णव सेवा है, ऐसे नहीं कि कुछ विशेष वैष्णव आएंगे साल में एक बार वही वैष्णव है, नहीं, जो भी कृष्ण भक्ति में लगे हैं, नाम लेना शुरू कर रहे हैं, हमारा ये धर्म है सर्व करना, सेवा करना। जी, मेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ऐसी जो कपटता है वो एक यह है उपशाखा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निषिद्धाचार कुटी नाटी। कुटी नाटी के बारे में देखता हूं मैं कुछ नहीं क्या। तो ये जो कुटी नाटी है, ये जो कपटता है, कपटता भक्ति के लिए बहुत अधिक बाधक है, और श्रद्धा उसी में हो सकती है, उस व्यक्ति में स्ट्रांग फेथ डेवलप हो सकता है जिस व्यक्ति में कपटता नहीं है। इसलिए श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? श्रद्धा शब्दे कैल सदृढ़ विश्वास। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता है, कि श्रद्धा का मतलब ही है ये दृढ़ निश्चय होना कि कृष्ण भक्ति करने से बाकी कुछ और मुझे करना नहीं होगा। कृष्ण क्या उस रूट के समान है, जैसे पेट को भोजन देने से सारे शरीर में शक्ति पहुंचती है, तो ये फेथ ये श्रद्धा, और ये श्रद्धा स्ट्रांग नहीं होती, क्यों? क्योंकि कपटता के कारण। तो श्रद्धा को यदि स्ट्रांग करना है तो ये कपटता को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब हमारा जो श्रद्धा है। और किस चीज के प्रति श्रद्धा? साधु गुरु शास्त्र, तो शास्त्रीय श्रद्धा विकसित करनी है इन तीनों के प्रति। दो श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मीन्स भौतिक लोग, जो लोग बोल रहे हैं और उन पर विश्वास करना, उसको क्या कहते हैं? लौकिक श्रद्धा। और शास्त्रीय श्रद्धा क्या है? शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के जो निर्देश हैं उनके अनुसार कार्य करना, वो ये श्रद्धा है, शास्त्रीय श्रद्धा है। तो शास्त्रीय श्रद्धा से ही हम भक्ति में हमें बल मिलता है और भक्ति में हम उन्नति कर पाते हैं। तो ये जो उपशाखा है डुप्लीसिटी या जो टूटी नाटी है, तो ये हमारे लिए बहुत ही भयावह चीज है। तो ये श्रद्धा कैसे विकसित हो सकती है? तो शास्त्रों में कहा है कि पांच स्टेप्स हैं जिस करने से श्रद्धा हम विकसित कर सकते हैं। श्रद्धा का यही अर्थ है, यथा करोर मूल निषेचने न तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। तरोर मूल वृक्ष के जड़ में पानी देना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। यस्मिन कौन है? कृष्ण है। उनको तुष्ट करना सीखोगे तो फिर जगत तुष्ट होगा। तो उसको फेथ कहा गया है, और केवल श्रद्धा के कारण ही कृष्ण भक्ति में या कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो प्रोसेस है उसमें उन्नति कर सकते हैं। जो तीन प्रकार के भक्त है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उन्नत भक्त, उनका भेद क्यों है? श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा के लेवल के अनुसार उन तीनों में इस प्रकार का भेद है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ये श्रद्धा एक अभिन्न अंग है, क्योंकि श्रद्धा के बिना किसी भी कार्य को हम बहुत शक्तिशाली रूप से नहीं कर पाते। जैसे लोगों का भौतिक श्रद्धा होता है, कितना श्रद्धा होता है, मेरा भारत देश है, इतना मतलब मेरा ही है वो, तो उसके लिए वो क्या नहीं करते। तो वैसे ही श्रद्धा हमें वो स्ट्रेंथ देती है कृष्णमय कार्य को करने के लिए। तो शास्त्र कहते हैं कि पांच उनके स्टेप हैं जो करने से हम श्रद्धा को विकसित कर सकते हैं। पहला क्या है कि भक्तों के संग में बने रहना, एसोसिएशन विद डिवोटीज। तो भक्तों के संग में हम रहते हैं तो धीरे धीरे जैसे ही जनरल वे में हम एसोसिएट होते हैं, जिनमें हम सीखते हैं कि हाँ नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी हमें बहुत डिफिकल्टी है एग्जैक्टली पता नहीं कि जीवन का वास्तव में लक्ष्य क्या है। हाँ ठीक है, भक्ति है जीवन का लक्ष्य। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो सुनते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में, पुनर्जन्म आदि के बारे में सुनते हैं, तो फिर हमारा जो जनरल श्रद्धा है वो विकसित होता है। और फिर कैसे दूसरा वे क्या है श्रद्धा को विकसित करने के लिए, कि कृष्ण के बारे में मोर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा रीड कृष्णा बुक। प्रभुपाद ने क्या कहा? शाम को क्या करो? कृष्णा बुक को पढ़ो, ताकि जो ये भगवान का स्पेसिफिक फॉर्म है उनके प्रति जो फेथ है वो बिल्ड होता है, विकसित होता है। स्पेसिफिकली कृष्ण के बारे में अंडरस्टैंड करो, और क्या करो? टेक शेल्टर ऑफ श्रवण गुरु, हाँ मतलब श्रवण करना सीखो। जिस चीज के बारे में हम श्रवण करते हैं उस चीज से हमारा अधिक फेथ बढ़ता है, फेथ बना रहता है। तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए श्रवण करने से क्या सीखते हैं कि ओ कृष्ण कितने भक्त वत्सल है, उन्होंने आपने भक्तों को वो कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, न मैं भक्त्या प्रणश्यति। जब ये ऐसी चीजें सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं हाँ कृष्ण है वहां, तो फेथ हमारा इंक्रीज होता है। और चौथी चीज क्या है कि जो भी हमने सुना है उस पे क्या करो, मनन करो। हाँ, तो जब इस प्रकार से करेंगे तो इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्रद्धा को हम बढ़ा सकते हैं। और जो आखिरी चीज है वो क्या है कि भगवान से प्रार्थना करें, कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण आपके जो ये प्रोसेस है इसमें मेरा श्रद्धा बड़े। और ये चीजों को हम अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि कितना श्रद्धा का लेवल बढ़ा है। क्योंकि कृष्ण के वाणी में श्रद्धा होना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने गीता में जो शब्द हैं उनमें हमें फेथ नहीं है, तो ये फेथ बिल्ड करना होगा। कृष्ण ने कहा सो अल्पमप्यसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो इसके लिए हमें फेथ नहीं है। कृष्ण कहते योग क्षेम, उनको पता है कि ये फेथ नहीं है, इनका श्रद्धा नहीं है स्ट्रॉन्ग, इसलिए कृष्ण कहते मा शुच। आखिर में क्या कहते हैं डरो मत। हाँ कहते सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, हाँ मेरे एक की एक में शरण ग्रहण करो। और मैं क्या करूंगा अहम ताम सर्व पापेभ्यो, ऐसे कोई स्पेसिफिक पाप नहीं बोला भगवान ने कि गो हत्या करोगे तो मैं नहीं रक्षा कर सकता, उससे मुक्त नहीं कर सकता। हाँ कुछ पापों को भगवान ने अलग अलग कैटेगरी में नहीं डाला। हाँ सर्व पापेभ्यो अहम ताम सर्व वैष्णव अपराध्योभ्यो नहीं कहा भगवान ने कि जितने मर्जी वैष्णव की टांग तोड़ो मैं बचाऊंगा, नहीं कृष्ण के पास वो शक्ति नहीं है। दुर्वासा को भी वो नहीं बचा पाए, कृष्ण कहते जा उनका शेल्टर ग्रहण करो। तो भगवान किस चीज से रक्षा करते हैं, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुच, डरो मत। इसमें फेथ है हमारा, सर्व धर्मान परित्यज। श्लोक उच्चारण में कितना अच्छा लग रहा है ना, श्लोक क्लास में आनंद आता है सर्व धर्मान परित्यज। हाँ लेकिन जब हम उस पर चिंतन करते सोचते हैं तो बहुत कठिन है। तो ये क्या है हाईएस्ट श्रद्धा का लेवल है। और इसी को कहा है जड़ में पानी देना। और ये श्रद्धा विकसित होगी जब हम बहुत गंभीरता से शास्त्रों को साधु गुरु आचार्यों के माध्यम से श्रवण करते हैं। श्रवण करने से क्या होगा, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, हाँ शुद्ध हो जाएगा चित्त। और क्या उदित होगा, कृष्ण प्रेम के, कृष्ण के लिए आसक्ति उत्पन्न होगी। हाँ प्रगाढ़ आसक्ति। और कैसे आसक्ति, ये फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं है कि नहीं, एक बार दूसरा क्या है फेविक पीक है हाँ तो ये चीज है ऐसी आसक्ति कि ये अभी तोड़ नहीं सकते चाहे जितना मर्जी बाधाएं आए। पांडवों का वह आसक्ति था, पांडवों के जीवन में तो कष्टों के सीक्वेंस थे। हाँ इतना आसक्ति था कि कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, बवंडर आ जाए, तभी पांडवों का आसक्ति कोई कृष्ण से तोड़ नहीं पाया। और ऐसे नहीं कि बचपन से ही थे हाँ ये सारे ट्रबल्स, लेकिन फिर भी उनका जब उनके आसक्ति को तोड़ने का प्रयास होता था तो वो आसक्ति और दृढ़ हो जाती थी। कुंती महारानी इसलिए कहती है क्या कि विपदा संतु ताशश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हाँ कि विपदाएं जब आती है तो हे जगत गुरु कृष्ण अपुनर्भव दर्शनम, वहां उस समय आप आते हैं और फिर हमें इस भव का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो उपशाखाएं हैं, पहली उपशाखा क्या है, निषिद्धाचार, निषिद्ध, यहां सिगरेट पीना वर्जित है, निषिद्ध है ना, लिखते है कई जगह निषिद्ध, मतलब जहां वो चीज नहीं आप कर सकते, तो निषेध है। तो इस प्रकार से ये उपशाखा है, गलत आचरण, गलत व्यवहार भक्तों के संग में, वैष्णव सदाचार, इसको सीखना चाहिए और अमल करना चाहिए। और दूसरा क्या है, कुचि नाटी, कपटता, ये कपटता तो दुख, श्रद्धा, कपटता है तो श्रद्धा कृष्ण के प्रति नहीं विकसित होगी। तो ये कपटता एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, और ये कपटता रहेगी तो पूरा जीवन हम भक्ति में रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, लेकिन अंत में कृष्ण के प्रति कोई रंश मात्र भी रति या आसक्ति नहीं हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करेगी। हाँ, क्योंकि कृष्ण के लिए स्थान नहीं दिया है, किस चीज के लिए स्थान दिया है, कपटता के लिए। और कपटता के कई भाई बंधु फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, वो बाकी आगे हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये कपटता के बारे में कहते हैं कि ये छह में से ये दो हैं, जिनको हमने सुना, तीसरा चौथा छठे आपको बता देता हूँ कौन कौन से। निषिद्धाचार तो एक हो गया, दूसरा कुटीनाटी, तीसरा जीव हिंसन, चौथा क्या है, जीव हिंसन के, जीव हिंसन का मतलब है जीवों की हिंसा करना, वायलेंस। अच्छा, तीसरा जीव हिंसन, चौथा क्या है, लाभ गेन, भौतिक लाभ, लाभ की पीछा रखना। पांचवा क्या है, पूजा, पूजा का मतलब ही है रिस्पेक्ट, मेरा भी आरती होना चाहिए, मैं इतने साल से भक्त हूं, क्यों नहीं मेरा आरती हो रहा है साथ साथ। और छठा क्या है, प्रतिष्ठा, कंचन कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़िया चे जय सहित वैष्णव, मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज कहते इतना अमेजिंग है ना। एक्चुअली सिद्धांत को समझना है, जो भक्त वैष्णव गीतों को जिसने ये बना लिया बस वैष्णव गीत को मुझे पढ़ना है ये समझना है, उसके लिए सारे जो सिद्धांत है वो क्या हो जाएंगे, सरल। हाँ, कई बार टफ है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कंचन कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी, प्रतिष्ठा की तुलना उन्होंने किससे की, बागिनी की, शेरनी, शेरनी से। छाड़ी अच्छे जय सही तो वैष्णव, हाँ सही तो वही डेफिनेशन है, कौन वैष्णव है इनको जो छाड़ देता है। तो यही है प्रतिष्ठा, मैं बड़ा प्रीचर हूं, मैं बड़ा स्पीकर हूं, मैं हूं। तो इस प्रकार की जो भावना है ये सब उपशाखा है, और ये सब भौतिक जगत में इसको क्वालिटीज कहा गया है। भौतिक जगत में तो लोग लालायित होते हैं और ये दिव्य गुण है उनके, है ना, उसके लिए वो तड़पते हैं। कोई भी नेता है वो उसका ये उसके ये लक्षण है, ये नेता के अंदर नहीं है तो वो नेता नहीं है। हाँ, ये जो छह चीजें किसी पॉलिटिशियन आदि में नहीं है तो वो जनता का नेता नहीं बन सकता। इस प्रकार से जो बाधक चीजें हैं जिनको ये अनर्थ है, जिनको अर्थ मान बैठे हैं हम लोग, अनर्थों को क्या मान बैठे हैं, अर्थ, मूल्यवान, अर्थ का मतलब ही है वैल्यूएबल चीज। नते विदुम स्वार्थ गतिम हे विष्णु, स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या है, स्वार्थ, खुद का क्या उसमें अर्थ है। तो लेकिन प्रहलाद महाराज कहते नमे विदु, विदु जानते नहीं ये लोग, नमे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये लोग भूल गए हैं कि असली स्वार्थ क्या है, असली अर्थ क्या है, विष्णु है, कृष्ण है। नाद ये तभी समझ में आ सकता है। हाँ, कैसे समझ में आ सकता है? साधु संगे निज तत्व अवगत है। जब तक साधु संग में नहीं आएंगे तब तक ये चीज समझ में नहीं आती कि मेरे वास्तव में अर्थ क्या है। हाँ, साधु संगे निज तत्व अवगत है, तो साधु संग में आने से ये जो निज तत्व है वो जान जाता है व्यक्ति कि मैं कौन हूं, ये सारी चीजें। और फिर जैसे अनुभव करता है वो फिर रोने लगता है, केंदे बोले हे कृष्ण अमित वादास, और रोते रहता है कि अरे अरे कृष्ण मैं तो आपका दास हूं, हाँ तोमार छाड़ी, आपको छोड़कर मैंने क्या किया, माया की सेवा की। हाँ, ये फिर साधु संग में आने से ये नहीं हो रहा है, उसका मतलब साधु संग नहीं हो रहा है, ये अनुभव नहीं हो रहा है कि हाँ केंद्र रो नहीं रहे हम कि रो रो के नहीं कृष्ण मैं तो आपका सर्वेंट हूं, लेकिन अभी मैंने क्या किया इतने दिनों से, हाँ आपकी सेवा छोड़ के मैंने बाकी और चीज माया की सेवा में लगा। हाँ, तो ये साधु संग नहीं हो, साधु संत का ये मतलब ही है, ये चीज होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना है कि नहीं, सारे जो आचार्य है वो सब इन्हीं चीज को लिखते हैं, भक्त साधु संग में आने के बाद, तो ये उसका लक्षण है। तो आगे हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये शिक्षा एक विराट रूप धारण करते हुए जाती है, रूप गोस्वामी की शिक्षा। आगे के तो कई शब्द है जो बहुत कठिन है समझना, हाँ जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। हाँ, उसमें तो भाव विभाव पता नहीं क्या क्या शब्द है, हाँ जो टफ है, हाँ लेकिन जो बेसिक हमारे लिए मूल्यवान चीज है, हाँ जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम समझ लेंगे जितना भी हो सके। तो चैतन्य महाप्रभु अभी भक्ति को ले जा रहे हैं, हाँ उसके बाद उन्होंने भक्ति को कैसे सेंशन करना, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, और उसके बाद क्या क्या गलत चीजें आ सकती हैं, फिर हाँ इसका पक जाएगी भक्ति तो क्या होगा, फल क्या आएगा, फिर महाप्रभु ने बताते पांच लक्षण कि हाँ भक्ति के ये लक्षण है, ये ऐसे होने चाहिए, इसके अलावा कुछ हो रहा है तो भक्ति नहीं है। हाँ, तो वो फेमस श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, कौन सा है वो भक्ति के, क्या भक्ति है उसका श्लोक, रूप गोस्वामी कहते अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुद्धम। तो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु ये एक श्लोक को एक्सप्लेन करता है, सारे एक श्लोक को ऊपर आधारित है भक्ति रसामृत सिंधु। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को